अज्ञानात्
अज्ञानवश
सिद्धा प्रज्वलित मन्युः
क्रोध
शुचा
शोक
से
अर्पितः
अभिभूत संतप्त इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता है। वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला में पाठशाला भेजा जाता है, जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिससे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस प्रकार दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुणावस्था की बात जाने दें, बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध में उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। श्री प्रभुपाद की
Krishna, 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 Krish सुखा भोगनम एवच लब्ध पिप्सित ज्ञान निदा मनुष्य चार पिता। तो यहाँ भगवान कपिला देव जी हमें शिक्षा दे रहे हैं और इस तीसरे स्कंद में भगवान कपिला देव हमें शिक्षा दे रहे हैं भक्ति के आवश्यकता के विषय में। भगवान कपिला देव की लाइट कैसे हो सकती है, लाइट सीधा आंखों में आती है। हाँ थैंक यू, बिकम राइट इन द आईज। तो भगवान कपिला देव कौन है, कौन है भगवान कपिला देव? स्वयं भगवान है। पिता का नाम था कदाव मुनि, माता का नाम था देवमुनि। पिता ने 10,000 वर्षों तक बड़ी गहरी तपस्या की थी, जिसके पश्चात उन्हें परम भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो भगवान ने उन्हें सूचना दी थी, क्योंकि विवाह के पश्चात उनकी 9 बेटियां होंगी और 1 बेटा, और वो बेटा कौन होगा उनका ही अवतार। भगवान के अवतारों के विषय में आपको शास्त्र में ज्ञान मिलता है। भगवान के अवतारों के कई विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुना अवतार, मनमंत्र अवतार, योग अवतार और शक्तावेश अवतार। और भगवान के पिला देव स्वयं भगवान हैं। पहला ये होते पहले इस विषय का वर्णन भगवान ने स्वयं किया कदम मुनि को। और जब भगवान माता के घर में थे, ब्रह्मा जी ने भी ये शिक्षा दी। तो जब भगवान कपिला देव प्रकट हुए, उनकी माता ने उनसे उपदेश मांगा। माता ने कहा कि माता को पता था मेरा बेटा स्वयं भगवान है। तो माता ने पूछा किस प्रकार इन क्लेशों से मुझे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और बेटे ने कहा भक्ति योगी एक साधन है जिसके द्वारा आप इन क्लेशों से मुक्त हो सकते हो। और उन्होंने आगे कहा कि हमें भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए और भक्तों की संगत में भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पिछले कई अध्यायों से भगवान कपिला देव भक्तियों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और कपिला देव ने हमें समग्र योग का ज्ञान दिया है, पर समग्र योग का निर्णय क्या है, भक्ति योग। और बड़े स्पष्ट रूप से भक्ति योग पर बल दिया जा रहा है उनकी शिक्षा में। इस अध्याय में ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और किस प्रकार उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस अध्याय का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भौतिक वादियों के पास नहीं। भौतिक विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं ये समझने के लिए कि बच्चे का क्या भाव रहता है माता के गर्भ में। और अगर आप ये अध्याय पढ़ोगे, एक तो आपको ये शिक्षा मिलेगी किस प्रकार बच्चा बड़ा होता है पहले दिन से और किस प्रकार माता के घर में बच्चे जीवात्मा को बहुत भारी कष्ट भुगतना पड़ता है। और अगर वो भाग्यवान हो तो उस स्थिति में वो भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे अगर आप इस स्थान से मुक्त करोगे तो मैंने कहा कि आपकी सेवा में जुड़ूंगा। और जब वो निकलता है उस स्थान से तो सेवा करता है। भूल जाता है। जैसे कि साधारण स्थिति में जब हम कैच की स्थिति में हो तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, और जब वो कैच गुजर जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। सच तो वही स्थिति है, जब हम माता के घर में होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं और उस स्थिति में प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे इस कष्ट की स्थिति से मुक्त करो। पर जब हम माता के घर से बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं ठाकुर भक्तिनो जी भी ये भाव अपने जीव जागरण प्रार्थना में प्रस्तुत करते हैं, और किस प्रकार हम भूल जाते हैं और माया के अनेक कार्यों में जुड़ जाते हैं। तो इस आज के श्लोक में कपिला देव क्या कह रहे हैं, आज के श्लोक में पहले तो कपिला देव जी ने पिछले श्लोकों में ये साबित कर दिया है कि भगवान माता के घर में क्या है, खस्सी कष्ट, एक पल का भी सुख नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमें एक पल के लिए भी उस रूप में बैठना पड़े जैसे बच्चे को बैठना पड़ता माता के घर में तो हम बेहोश हो जाए, इतना भारी कष्ट माता के घर में हमें स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि आपको जन्म मृत्यु के बंधन से क्या मिले। अगर हम सोचेंगे नहीं 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 बहुत एक समाज में बहुत सुख है तो ये बहुत भारी भूल है। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो शरीर जैसे बढ़ता है ये नहीं कि कष्ट कम हो जाता है, पर भगवान कपिला देव कह रहे हैं कि इस प्रकार विधि प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है बच्चे को। हम जब बच्चा छोटा होता है तो भी कष्ट, जब वो कौमार की उम्र प्राप्त करता है जब भी कष्ट, और अंत तक कष्ट ही कष्ट रहता है, और अज्ञानता के कारण वो क्रोधित हो जाता है, पछताता है, और अनेक प्रकार के क्लेशों को भुगतना पड़ता है। भगवान भागवत गीता में क्या कहते हैं, भौतिक संसार के दो लक्षण हैं, क्या है, दुखालयम, भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है, हर चीज जो है अस्थाई है। लगभग इस अध्याय के हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय को स्थापित कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में क्या है, क्लेश क्लेश। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ये भौतिक संसार क्या है, एक बड़ा जेल खाना है जिसमें हम सब कैदी हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं शुरुआत से 5 साल की आयु तक जो बचपना है और आगे पौगंडा और आगे युवक, हम कष्टों से अपने आप को नहीं बचा सकते, और हालांकि आप कितना भी प्रयास करो भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है। सबसे पहले तो 7 प्रकार के कष्ट हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, जैसे हमने संक्षेप में कहा किस प्रकार माता के गर्भ में बच्चे को कष्ट भोगना पड़ता है, इतना कष्ट भोगना पड़ता है कि कई बार उस कष्ट के कारण बेहोश हो जाता बच्चा, और कई बार आप देखते हो बच्चा जब जन्म भी होता है जन्म लेता है मरा हुआ होता है, क्यों, कष्टों के कारण। फिर बुढ़ापापन, किसी को बुढ़ापापन पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता, हम प्रयास करते रहते हैं बुढ़ापेपन को छुपाने के लिए। पश्चिम देशों में कई एंटी एजिंग दुकानें हैं एंटी एजिंग मतलब कि वहाँ उन सुविधाओं को प्राप्त करते हो जिसके द्वारा आप बुढ़ापे पर को छुपा सकते हो। तो चाहे आप कितना भी प्रयास करो आप बुढ़ापेपन को रोक नहीं सकते। फिर रोग पीड़ा रोक सकते हो नहीं रोक सकते। हमारे विज्ञानी हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि अनेक बीमारियों का उपाय वो ढूंढ रहे हैं। पर क्या आप कह सकते हो कि लोगों की बीमारी की संख्या कम हो गई है, कम हुई है? किसी हॉस्पिटल में जाओ वो हॉस्पिटल भरा हुआ है मरीजों के साथ। दिन पे दिन नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं हर जगह। कई देशों में अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आपको 4-4 महीने इंतजार करने पड़ती है। क्यों? इतने बीमार व्यक्ति हैं। फिर मृत्यु, मृत्यु किसी को चाहिए नहीं। चाहे आप कितनी भी बड़ी योजना बनाओ मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। ये तो हुए 4 प्रकार के कष्ट। इसके अलावा 3 और प्रकार के कष्ट हैं, आदि देवी, आदि पौधे और अनेक प्रकार के प्रकृति द्वारा कष्ट। आज के वातावरण में प्रकृति द्वारा जो कष्ट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अनुभव करोगे कि भूकंप, अकाल, बाढ़ इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती है, भारत में ही नहीं, अमेरिका में, हर जगह। जैसे कि ये साल विश्व के कई देशों में अकाल आया है, कई बार देखो बाढ़ और भूकंप, भूकंप की संख्या भी कितनी तेजी से बढ़ते जा रही है। तो प्रकृति के कष्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। भगवद गीता के 3rd अध्याय में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे, जिसका अर्थ है धर्म के नियमों का पालन। जब समाज में धर्म के नियमों का पालन नहीं हो तो प्रकृति साथ नहीं देगी। माया दक्षिण प्रकृति, भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरे आदेश से चलती है। और जब प्रकृति साथ नहीं देती तो आप देखते हो समाज के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आज के श्लोक और तात्पर्य में आप ये पढ़ रहे हो, शुरू से ही कष्ट ही कष्ट है। जो बच्चा माता के घर में कष्ट अनुभव कर रहा है, जो बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो इस अध्याय में। फिर जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, युवक बनता है, भगवान आयु प्राप्त करता है, जब ये क्लेश 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 और ये 7 प्रकार के क्लेशों से कोई बच नहीं सकता। तो प्रकृति द्वारा कष्ट बढ़ता है जब धर्म के नियमों का पालन नहीं हो। उदाहरण के लिए आप श्रीमद् भागवतम में महाराज बेना की कथा पढ़ते हो। महाराज बेना राजा थे 1000 साल पूर्व, पर असुरिक भाव था उनका। उन्होंने समाज में हर प्रकार के यज्ञ को रुकवा दिया था, ब्राह्मणों के घरों में जला दिया था। क्यों? ब्राह्मणों को कहा तुम वैश्य हो, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं, मेरी पूजा की बजाय भगवान की पूजा कर रहे हो। जिसके द्वारा ये परिणाम हुआ कि समाज के कष्ट बढ़ते गए, बारिश बंद हो गई और लोग अत्यंत दुखी। अंत में जो ब्राह्मणों ने देखा कि समाज की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, प्रजा इतनी दुखी है, तो ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दिया और फिर उनके पुत्र पितुमणा का शासन आरंभ हुआ। पृथु महाराज ने आरंभ शासन आरंभ में कहा क्या भगवान के नामों का उच्चारण करो, और जब प्रजा ने भगवान के नामों का उच्चारण किया तो हर प्रकार की आवश्यकता तुरंत प्राप्त हो गई थी। आज भी हम समाज में राम राज्य का स्मरण करते हैं, क्यों? राम राज्य के समय पूरा समाज 100% सुखी था, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई बीमारी नहीं, और मृत्यु अपनी इच्छा के अनुसार आप चुन सकते थे कब मृत्यु का समय आना चाहिए। अगर आज आपको ये छूट दी जाए मृत्यु इच्छा के अनुसार मृत्यु चुनेगा, तो मृत्यु भी अपनी इच्छा के अनुसार। और वो सुख क्यों था समाज में? क्योंकि पूरा समाज धार्मिक था, भगवान राम प्रजा को अपनी औलाद के समान पाल रहे थे। भगवत अपने 9वें स्कंद में भगवान राम की कथा पढ़ते हो या ये ज्ञान प्राप्त करते हो किस प्रकार से समाज की प्रजा इतनी सुखी थी, क्योंकि जो राजा था वो पिता के समान था। वो हालांकि भगवान थे, भगवान राम स्वयं भगवान है, पर वो राज्य कर रहे थे राजा के रूप में, उनके शासन में लोग सुखी थे क्योंकि पूरी प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा था। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। बाकी सिद्धांत जी कह रहे थे समाज में किसी चीज की कमी है तो इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो भक्तों के मन में बिना शंका के ये भाव रहना चाहिए कि भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है। कई बार हम भक्ति में जुड़ते हैं और विचलित हो जाते हैं, क्यों? सोचते हैं भक्ति में इतनी तपस्या करनी पड़ती है, भौतिक संसार में देखो सब हंस रहे हैं, सब सुखी। ये जो हंस रहे हैं ये है दो दिन के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि पुराने जमाने में किसी कैदी को सजा देनी होती थी तो ले जाते थे दरिया के बीच में, सिर को डुबो देते थे पानी के नीचे, फिर 2 मिनट के लिए सांस लेके ऊपर निकालते थे, फिर वापस नीचे रुकी। तो इसी प्रकार भौतिक संसार में कभी कभी भौतिक सुख प्राप्त हो जाता है, पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यही भौतिक सुख जो आज सुख का कारण बनता है कल दुख का कारण बन जाता है। तो ये भौतिक संसार है जेलखाना, यहाँ की शुरू से अंत तक ये नहीं कि शुरू में आनंद ही आनंद है और बाद में कष्ट, शुरू से आनंद अंत तक हमें कष्ट से कष्ट भुगतना पड़ता है। तो आप ये जानना चाहोगे अगर शुरू से अंत तक कष्ट ही कष्ट है तो कुछ उपाय है या नहीं? क्या है उपाय? भगवान कपिल देव पहले तो भक्तियों की महिमा की चर्चा कर चुके हैं, इसके पश्चात वो हमें उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार जीवात्मा माता के घर में अनेक प्रकार के कष्टों को भुगतता है। और माता के घर में ही नहीं, आप कहोगे चलो माता के घर में कष्ट है बाहर आने पर तो सुखी सुख है, वो कह रहे हैं शुरू से अंत तक कष्ट कष्ट। कई बार भौतिकवादी ये आरोप लगाते हैं ये हरे कृष्ण वाले तो हमें डरा देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, हम डराते नहीं हैं, शास्त्रों का ये प्रमाण है और आप खुद भी अनुभव कर सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो क्या देखोगे? कष्ट कष्ट। हर साल नया साल जब शुरू होता है हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। पर अगर देखा जाए साल की समाप्ति में तो आप देखते हो चाहे कि सबने आपको कहा हो हैप्पी न्यू ईयर, हमें क्या अनुभव होता है कष्ट का। तो एक ही उपाय है, वो है भक्ति योग। और भक्ति योग का ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? आपके अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है, टाइम्स में भक्तियों का ज्ञान क्या मैगजीन में प्राप्त होता है? नहीं, भक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है इन ग्रंथों में। हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं इस विषय पर महत्व दिया है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा? या न परमं कुयम्। सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। कई बार लोग पूछते हैं, कोई भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? कई बार लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी ने 64 माला से 16 माला कर दिया, 16 माला से और कम नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब देते नहीं, प्रभुपाद जी ने भविष्य के 10,000 सालों के लिए हमें पूरा उपदेश दिया है। तो अगर आप भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे सरल माध्यम क्या है? प्रचार की सेवा में जुड़ने के लिए। प्रचार के अनेक साधन हैं, जैसे हम हमारे भाई नाम में जाते हैं, जैसे आप लोग कॉलेजेस वगैरह में प्रचार करते हो। पर सब प्रकार की सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? ग्रंथों की पुस्तक की सेवा। ये प्रचार के सेवा पर भगवान ने स्वयं बल दिया। भागवतम के अनेक श्लोकों में इस विषय पर बल दिया जाता है। दयाया सर्वपते संतुष्ट ये न के नवा सर्वेन्द्र पाशांति अजात कृषाते सूचनादन। महानाद मुनि जी प्रचेतस को कहते हैं भागवतम के 14 स्कंद में कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 चीजों की आवश्यकता है। एक दयाया, दया की भावना होनी चाहिए, फिर संतुष्ट हो हर स्थिति पर और मन इंद्रियों को पहचानता। तो ये प्रचार भागवतम के अनेक श्लोकों में प्रचार की सेवा पर बल है। जैसे कि भगवान कपिलदेव जी ने 25वें अध्याय में हमें भक्तों के गुणों या लक्षणों का वर्णन किया है। और भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक? तितिक्षवा करुणिकहा सुहृदा सर्वस्नेहिनम् अजित सत्वत सत्ता सर्वत साधुभूषणम्। करुणिकहा, करुणिकहा का क्या मतलब? उसमें दया की भावना होती है। तो दयालु भक्तों के विषय में कहा जाता है, भक्त हैं वो दयालु होते हैं। तो कृपा, असली कृपा क्या है? लोगों को ये दिव्य ज्ञान देना जिसके द्वारा वो अपने असली स्वरूप को पहचान सके। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भी प्रचार की सेवा पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने साथियों को क्या कहा? घर घर जाकर एक संदेश लेकर जाओ। क्या? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा सिद्ध। क्या? बोलो कृष्णा, कृष्णा का नाम लीजिए कृपा करके, कृष्णा का भजन कीजिए, पूरी उपासना कीजिए और उनकी शिक्षा को अपनाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों का आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने और कहा था कि केवल रथ यात्रा के समय वो वापस आ सकते हैं। और जब उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा जाओ घर घर प्रचार करने के लिए। जिनमें एक जोड़ी बनाई थी हरिदास ठाकुर भगवान नित्यानंद की, भगवान नित्यानंद को पता था चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं पर प्रकट हुए हैं भक्त के रूप में। हरिदास को पता था चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। हरिदास रघुवेद आचार्य दिन रात शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे इस प्रार्थना के साथ कि भगवान स्वयं प्रकट हों पतितों का उद्धार करने के लिए। तो हरिदास को भी पता था महाप्रभु का असली स्वरूप क्या है, पर साधारण प्रजा को ये ज्ञान नहीं था। इसलिए जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, हिंदू ब्राह्मणों ने भी उसका विरोध किया। न वो देखते उन्होंने कहा क्या ये सन्यास ये हरे नाम कर रहा है, हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने जाकर काजी को शिकायत की, ये हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है ये सन्यास, हरे नाम ये हरे नाम कहा है हमारे शास्त्र में। मुसलमानों ने तो कहा, मुसलमानों ने जाकर कहा चांदकाली से, आप इसके आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। जब हमारी संस्था इंडोनेशिया में आरंभ हुई थी तो हमारे अमेरिकन भक्त थे उसमें, तो उन्होंने स्पष्ट कहा व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, पैदाइश जन्म के पर आधारित नहीं। तो वहाँ जो पंडित थे हिंदू उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जाकर शिकायत सरकार को शिकायत की कि हरे कृष्ण वालों को रोको, ये लोग हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर, क्योंकि वो शास्त्र पर आधारित उपदेश दे रहे थे कि ब्राह्मण भाव बनते हैं गुणों पर आधारित। तो हरिदास नित्यानंद को पता था कि महाप्रभु जी का असली स्वरूप क्या है, और जब वो घर घर जा रहे थे प्रचार करने के लिए, कई घरों ने तो उनका बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया, संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए। कई घरों में वो गए, लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, कहा लगता है जासूस है हमारे घर में आ रहे हैं देखने के लिए क्या है, फिर बाद में आएंगे चुराने के लिए। तो जब नित्यानंद हरिदास सुनते थे कि लोगों ने जासूस बुला रहे हैं तो हंसते थे। कई घरों में वो जाते थे, लोग कहते थे जब हमने प्रयास किया आपके संकीर्तन में जुड़ने के लिए आपने रोक दिया, क्योंकि जब महाप्रभु शिवास पंडित के घर में अपना वहाँ संकीर्तन कर रहे थे तो केवल जो उनके प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें ही अंदर आने की इजाजत थी, पूरी प्रजा को नहीं, तो कई लोग उनके शत्रु बन गए थे। तो वहाँ नित्यानंद हरिदास ने परवाह नहीं की, तो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने हमें ये सूचना दी है किस प्रकार का भाव होना चाहिए वैष्णव में, बड़ा दुखा दुखी। वैष्णव का एक लक्षण है दूसरों को दुखी देखते हुए, क्या हुआ दुखी है, बड़ी कोठी है, बड़ी मोटर चला रहा है, खूबसूरत बच्चे हैं, बच्ची पत्नी है, पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, जैसे हमने आज के श्लोक में पढ़ा और लगभग इस अध्याय के हर श्लोक में पढ़ रहे हो, क्या शुरू से अंत तक क्या है, शुरू से अंत तक रोना ही रोना है, बीच में थोड़ी हंसी आ जाती है पर है रोना ही रोना, पर हम ये स्वीकार करना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हम ये सोचना चाहते नहीं नहीं अगले कदम में सुख मिला, अगले कदम में ये सफलता प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जब संकीर्तन आरंभ किया था तो हर व्यक्ति का नाम अधिकार नहीं, तो कई लोग शत्रु बन गए थे, और जब नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे इस कारण वो दरवाजा भी नहीं खोलते थे। हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हरिदास ये बताओ इन मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा, इन मलेच्छों की स्थिति को देखकर मुझे घबराहट आ रही है। हरिदास ने कहा प्रभु चिंता न करिए, हे मेरे भगवान चिंता मत करो, हा राम बाल कहे नाम आवाज से, ये लोग शुद्ध हरि नाम का उच्चारण करेंगे और इस क्लेशों से बच पाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जहाँ प्रचार की सेवा पर बल दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में अनेक श्लोक हैं जिसमें आप प्रचार के महत्व का ज्ञान प्राप्त करते हो। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र, उन्हें खोर की बीमारी थी, पूरा शरीर कीड़ों से भरा हुआ था, पर वासुदेव बेटा इतने दयालु थे, जब कोई कीड़ा नीचे गिरता भी था उसे उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे। अंदाजा लगाओ पूरे शरीर में पस 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 था। वो गए महाप्रभु को मिलने के लिए ब्रह्मा ब्राह्मण के घर, यहाँ पर उन्हें सूचना मिली महाप्रभु निकल चुके हैं, महाप्रभु तो अंतर्यामी है क्योंकि वो भगवान हैं। तो जब वो लौटे उन्हें गले लगाया महाप्रभु ने, और गले लगाया, गले लगाते ही खोर की बीमारी क्या दूर हो गई, और वो बन गए युवक, खूबसूरत युवक। तो वासुदेव विप्रा के मन में वे वासुदेव विप्रा ने उन स्तुतियों का वर्णन किया जिनका वर्णन सिद्धामा ब्राह्मण ने किया था। कब सिद्धामा ब्राह्मण भगवान को द्वारका में मिलकर अपने स्थान में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वो जो उनकी पुरानी कुटिया थी क्या बन गई है, महल बन गई है। तो उनकी पत्ती जो कि पत्ती पटे हुए साड़ी में थी, सजी हुई है गहनों के साथ और रेशम की साड़ी के साथ। तो सिद्धामा ब्राह्मण समझ पाए ये संभव हुआ है किसी के पास है, उनके मित्र भगवान की कृपा। तो उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान का गुणगान किया जिन्हें आप दर्शन स्कंध में पढ़ सकते हो। तो वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया, उसके पश्चात वासुदेव विप्र ने पूछा भगवान से, उन्होंने कहा पहले तो मैं इतना बदसूरत था कि मेरे पास कोई आता भी नहीं था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं कि मुझे डर है मैं कि मेरे मन में गौरव नहीं आ जाए, घमंड नहीं आ जाए, तो विनम्रता के साथ किस प्रकार से भाव रखूं। और भगवान ने कहा हरे नाम का उच्चारण करो, हरे नाम की महिमा का उपदेश करो, भागवत गीता का अध्ययन करो और इस संदेश का प्रचार करो, इस प्रकार तुम्हारा हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। और प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में कहते हैं जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संस्था के हर भक्त का उद्धार हुआ है। तो हर भक्त का कर्तव्य बनता है क्या कि वो हरि नाम का उच्चारण करे, हरि नाम की महिमा का प्रचार करे, गीता भागवत का अध्ययन करें, गीता भागवत के संदेश का प्रचार करें, और इस प्रकार से करोगे तो हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने भी इस प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया, क्यों, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने इस प्रचार की सेवा पर बल दिया था। भक्ति सिद्धांत जी ने कार्तिक के महीने में ही जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले थे राधा कुल में, भक्ति सिद्धांत जी ने एक कागज पेंसिल लेकर एक मृदंगा की तस्वीर खींची जिसमें उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों का विवरण करो और ग्रंथों को प्रकाशित करो। और प्रभुपाद जी ने खुद विदेश जाने से पहले भी कितना समय दिया ग्रंथों के विवरण की सेवा में, क्यों, क्योंकि ग्रंथों में क्या है, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, महान आचार्य की व्याख्या। तो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की उन्होंने भक्तों को आदेश दिया था अमेरिका में, उन दिनों में भारत में कोई मंदिर नहीं था, जैसे आप जानते हो पहले मंदिर इस्कॉन के सब अमेरिका में खुले थे और भक्त लगभग सब अमेरिकन थे। तो प्रभुपाद जी ने जब संस्था आनंद की ओर कहा भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट बाय बुक्स, अमेरिकन भक्त बड़े आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं ग्रंथों को बांटो पर हम कैसे बांटेंगे कैसे, उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। और एक दिन एक भक्त पेट्रो संकीर्तन करके घर सैन फ्रांसिस्को में लौट रहे थे मंदिर, तो एक पेट्रोल पंप में रुके पेट्रोल डालने के लिए, $10 का पेट्रोल डाला और फिर उस भक्त जिनका नाम था केशव, उसने सोचा मुझे कि पेट्रोल पंप के मालिक के पास जाने दो, मैं देखता हूँ $10 की बजाय अगर मैं उसे एक कृष्णा बुक दे दूँ बोलेगा या नहीं। तो वो गया इस भाव के साथ, उसने कहा $10 की बजाय एक किताब दे दो। और पेट्रोल पंप का मालिक अमेरिकन था, वो मान गया लेने। तो इससे उनका उत्साह बढ़ गया, उन्होंने कहा कि अगर एक स्थान में हम एक गीता एक कृष्ण को बांट सकते हैं तो क्यों नहीं दूसरे स्थानों में भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई, जैसे आप जानते आस्ते आस्ते बढ़ गया। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हर कार्य सफल बना सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाते हैं, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन बन जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रयास करते हैं मुझे मेरी सेवा में जुड़ने के लिए, उन्हें अगर कुछ कमी भी हो उसे मैं क्या करता हूँ, दूर करता हूँ। तो अनेक कोट से प्रभुपाद की रोज सब आप सुनते हो, प्रभुपाद का एक पत्र जिसमें प्रचार की सेवा पर बल दिया जाता है। तो हर साल खास करके गीता जयंती के उपलक्ष जो मैराथन हम भक्त करते हैं, जैसे संक्षेप में हम गीता मैराथन कहते हैं, हमारे भक्त प्रयास करते हैं और खास करके हिंदुस्तान में इस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे आप जानते हो कई मंदिर हैं जो 2-2.7 लाख गीता पढ़ते हैं हर साल मैराथन में। तो हमारा निवेदन है कि जो भक्त यहाँ जुड़े हैं वृंदावन मंदिर के साथ, चाहे आप किसी भी मंदिर के साथ जुड़े हो, गुजरात के, दिल्ली के, बॉम्बे के, ये कृपा करके प्रचार की सेवा में जरूर जुड़िए। इसी वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी ने कहा था अपने अंतिम दिनों में, as long as book distribution goes on, I will never die. जब तक ग्रंथ का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रंथों द्वारा क्या है, भगवान का संदेश, श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। परम भगवान क्या बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, किसके लिए, समाज के सुधार के। अगर आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जैसे आप जानते हो एक समय था जब प्रभुपाद जी वृंदावन में दादा दादा मंदिर में निवास करते थे और अकेले थे, टाइप राइटर में टाइप करते थे, फिर ठांगा लेकर मथुरा स्टेशन पहुंचते थे, मथुरा से दिल्ली जाते थे थर्ड क्लास डब्बे में, फिर दिल्ली में पहुंचकर फिर साइकिल रिक्शा लेकर जो जाते थे उस स्थान में ग्रंथों को छापने के लिए, और फिर स्वयं जाते थे ग्रंथों का वितरण करने के लिए, और इसके अलावा स्वयं जाते थे बड़े व्यापारियों के पास उनसे चंदा मांगने के लिए, किस लिए, इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए। तो आप जानते हो किस प्रकार प्रभुपाद जी ने अनेक परेशानियों को उठाया, क्यों, इन ग्रंथों के वितरण की सेवा के लिए, क्यों, क्योंकि मन में एक ही भाव था किस प्रकार बच्चों का सुधार हो, ये भाव रहना चाहिए। आप लोगों के महाराज हमारे में भाव है ही नहीं, हम तो चिंता ही नहीं करते लोगों में नरक में जाना था, हमें क्या, हमारा तो स्वार्थ हो रहा है दूसरों को नरक में जाना है। ऐसा भाव भी रख सकते हो, पर हर क्षेत्र में हमारा प्रयास रहता है हम आगे बढ़े, है कि नहीं। नहीं, आपको मान लो बुखार हो तो आप चाहते हो कि बुखार रहे सदा, आप चाहते हो बुखार जल्दी जल्दी घटे, है कि नहीं। आपको भूख लगती है, आपकी इच्छा है कि आप हमेशा भूखा रहो, नहीं, आप चाहते हो भूख को दूर करने। उसी प्रकार हमारा प्रभाव होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, वांस इन डिवोशन सर्विस, ये नहीं कि वहाँ के वहाँ पीछे के पीछे रहे। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम वो कार्य करें जो भगवान की इच्छा हो। अपनी इच्छा के अनुसार भी सेवा कर सकते हो, पर ज्यादा ऊंचा भाव क्या है? भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये नहीं हमारी इच्छा भगवान की इच्छा। अब हम साधारण स्थिति में सोचते हैं माई विश भी गॉड विश, जो हमारी इच्छा है वो ही भगवान को पूरा कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है। तो भगवान की इच्छा है हम प्रचार करें, इसलिए भगवान ने गीता में उपदेश दिया है। भगवान की इच्छा प्रचार करें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कार्य पर बल दिया। और हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति जी ने महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था कि उन्होंने विश्व के महाविद्यालयों को भेजा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु जी जिन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था इस सेवा को निभाने के लिए, स्वयं उन्होंने अपने ये ग्रंथ के वेतन की सेवा आरम्भ की थी। अपने भक्त भेजते थे वो अलग अलग स्थानों में और उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था। और आप देख रहे हो ये संस्था अगर बड़ी है, प्रभुपाद जी तो अकेले गए थे न्यूयॉर्क 40 रुपये के साथ, और साथ में 200 सेट भागवतम के प्रथम स्कंद के ले गए थे जो उन्होंने भारत में प्रकाशित किया था। और अगर ये संस्था पढ़ रही है क्यों? लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। कभी कभी हमारे मन में अभाव आता है कि हम ग्रंथों को बांटते तो है तो कोई पढ़ता ही नहीं। चिंता मत करो, लोग पढ़ते हैं। अगर लोग नहीं पढ़ते तो भक्तों की संख्या बढ़ती तो नहीं बढ़ती। और आप देखोगे जिन जिन स्थानों में ग्रंथों का वितरण अच्छी तरह हो रहा है उन स्थानों में भक्तों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि भक्त प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, भगवान भी पूरा साथ देते हैं। और ये ग्रंथ की सेवा में जुड़ने यह एक अच्छा मौका है जिसके द्वारा हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्या है, भक्ति में आगे बढ़ो पीछे तो कुछ त्याग ना पड़े तो त्याग हो गए। तो ये निवेदन है आप सब जुड़िए। तो कई बार हमारे मन में भाव रहता है हाँ ग्रंथ के जो ब्रह्मचारी वो करेंगे ग्रंथ का वितरण, हम तो प्रयास हमारे पास समय नहीं। पर हमने ये भी अनुभव किया है खास करके भारत में और विदेशों में भी कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह ग्रंथों का वितरण करते हैं। अमेरिका में हमारे भक्त भाई शिशेखर प्रभु जिन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है वीकेंड वॉरियर, जो हमारे युवक इत्यादि जो नौकरी भी करते हैं कि पश्चिम देशों में 5 दिन लोग काम करते हैं 2 दिन छुट्टी कर दिया है, श्री जो एक बार जाते हैं ग्रंथों की वितरण की सेवा में। और भारत में भी अनुभव है कि हमारे गृहस्थ भक्त भी बड़े उत्साह से इस सेवा में जुड़ते हैं। केवल संत नगर मंदिर जो दिल्ली में है पिछले साल मैराथन में 2000 से अधिक गृहस्थ भक्तों ने भाग लिया था 2000, और उन सब ने मिलकर अमेरिका ने 4 लाख की दर बाटी थी। तो ये साल भी यही योजना है। तो वृंदावन मंदिर में कई यात्री आते हैं और ग्रंथों को लेते हैं, पर हमें और भी लोगों के पास जाना चाहिए। और अगर आप प्रचार में जुड़ोगे तो भक्ति में भी बढ़ोगे। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा मैं हमेशा जीवित रहूँगा, प्रभुपाद ने वृंदावन धाम में कहा एज लॉन्ग एज पब्लिसिटी गोज ऑन आई विल नेवर डाई। क्यों? जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, प्रभुपाद की शिक्षा को प्राप्त करेंगे और समझेंगे क्या हमें हमारे जीवन को सुधारना है इस शिक्षा के आधार पर। मैं कुछ महीने पहले रशिया में था, मैंने रशिया के गुप्तों से पूछा और रशिया जैसे देश में जहाँ की सरकार गीता को बैन करने का प्रयास कर रही है, जहाँ की चर्च टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट डालता है डोंट बाय द हरे कृष्ण भगवत गीता इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलना भी नहीं। तो उन शहरों में भी उन देशों में भी हमारे भक्त और सर्दी के मौसम में इस समय रशिया जैसे देश में आपके वृंदावन की सर्दी से 50 गुना ज्यादा है, कम से कम 20 गुना ज्यादा सरल है। और उस वातावरण में हमारे भक्त क्या करने हैं, ग्रंथों का वंदन करने हैं। हमारे कई भक्त आए थे परिसर से वापस चले गए पहले, क्यों, उन्होंने कहा नौ प्रसाद मैं रहता हूँ। तो पूरे इस काल में, इस महीने में, शुरू में मैराथन शुरू हुआ था 2 दिन के साथ, पर पूरा महीना प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को वितरण करने के लिए। और अनेक साधन हैं, कई बार आप हमारे पास बिजनेस रंग के पास जाते हैं, गीता वगैरह स्पॉन्सर कराते हैं, क्योंकि जेलों में और ये सब, तो कुंभ मेला भी आ रहा है, तो कुंभ मेला भी हमारी योजना है लाखों गीता बांटने की संस्कृत में, तो आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो, वन बाई वन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पर आवश्यक भाव क्या है कि हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं हमने तो कभी यह कार्य किया ही नहीं, पर अगर आपकी इच्छा है गुरु प्रभुपाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आप इसमें जुड़ोगे तो भगवान आपको योग्यता देंगे। तो यही निवेदन है आज के श्लोक में, भगवान कपिला देव ये कह रहे हैं कि चाहे आप युवक हो, बच्चा हो, पौगंड आयु हो, आपको भौतिक संसार में क्या अनुभव करना है, डिस्ट्रेस क्लेश ही क्लेश। और अगर असली सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व का ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, इन ग्रंथों में। और अगर समाज में किसी चीज की कमी है आज, तो किस चीज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो ये इस दिव्य ज्ञान को आप सब आगे बांट सकते हो। तो आप जुड़ना चाहते हो मैराथन में ये सब, कौन कौन जुड़ना चाहता है, सब ने हाथ नहीं उठाया, हाथ पूछो, सब जुड़ोगे। अगर कोई आपका अपमान करेगा तो क्या महसूस करोगे, आप किसके पास जाते हो वो कहेगा क्या हरे कृष्ण वाले सिर खाने आ जाते हो, हर साल आ जाते हो तुम लोग, और कोई धंधा नहीं है क्या, तो आप क्या कहोगे, हमारा यही धंधा प्रचार करना। अगर कोई आपका अपमान करे तो आप क्या सोचोगे, आप सोचना भगवान नित्यानंद के प्रति जो अपमान हुआ, जाहिर भाई मलाई ने उनका अपमान नहीं किया, किया। और जब नित्यानंद जी भी घर घर जा रहे थे, कई घर में लोगों ने उन्हें जासूस बुलाया, कई घर में लोगों ने कई घरों में लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, इतनी बेइज्जती की, जब भी उन्होंने सह लिया। तो अगर भगवान ने नित्यानंद बेइज्जती सह सकते हैं तो हम कौन है, हम उनसे ऊंचे हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे कईयों ने उनका विरोध किया, तो प्रचारक के लिए कठिनाइयों का कोई भय नहीं रहता, उल्टा जैसे कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान मेरे कष्टों को क्या करो, बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ, और उतनी जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो हम भक्त में यह भाव होना चाहिए कि हमने प्रचार करना है, और चाहे कठिनाई भी हो, आप लोग भारत में प्रचार कर रहे हो, यहाँ की सरकार और प्रजा का इतना विरोध नहीं है, अगर वो पूरा साथ नहीं देंगे तो कम से कम जहाँ आप जाते हो कोई आपको विरोध तो नहीं करता, कोई आपको आपके मन में ये भय तो नहीं रहता आपको गिरफ्तार कर लेंगे और जेल में डाल देंगे, ये रहता है। पर विदेशों में ये भय रहता है, कई देश हैं जहाँ की बुक डिस्ट्रीब्यूशन इलीगल है, वहाँ अगर पुलिस वाले आपको पकड़ लें तो आपको जेल में डाल देते हैं। तो उन देशों में भी हमारे भक्त सड़कों में जाकर क्या कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो देखते हैं पुलिस में ना रहे तो वो इधर से उधर चले जाते हैं। तो उस वातावरण में भी हमारे भक्त जो हैं प्रचार करें, इसीलिए प्रचार हर जगह फैला। तो आप ऐसी स्थिति में हो भारत में जहाँ को सब प्रकार की सुविधा है, और अगर इस वातावरण में भी आप प्रचार नहीं करो तो ये क्या होगा, अपमान होगा। तो आप सब जुड़िए उत्साह के साथ, और अगर आप सब जुड़ोगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने वृंदावन मंदिर के भक्ति लाखों गीता पाठ सकोगे और आप ही नहीं जहाँ भी आप जुड़ोगे आप देखोगे कि हर जगह भगवान सफलता देंगे। और इन ग्रंथों के एक और के विषय में ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए अगर कोई व्यक्ति ग्रंथ आज ले तो ये नहीं कि आज ही पढ़ेगा। मैं कई उदाहरण है मेरे सामने कि किसी ने ग्रंथ लिया और चार पांच छह साल बाद पढ़ा और वो भंग हो गया। तो हमारे में हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आज ही लोग पढ़ेंगे। कई बार भक्तों के मन में भाव आता है हम नहीं जी की तरह बाटी पर देखो क्या है नतीजा है नहीं नतीजा है। और सबसे अच्छा नतीजा क्या है भगवान प्रसन्न होते हैं जो आप प्रयास करते हो। तो प्रयास कीजिए जैसे और अगर प्रयास करोगे तो भगवान सफलता देंगे। दामोदर के महीने में आप रोज दामोदर सागर गा रहे थे और दामोदर सागर लीला में क्या देखते हो कि यशोदा माता प्रयास कर रही थी बेटे को पालने के लिए। क्यों? क्योंकि पड़ोस की इतनी गोपियाँ शिकायत कर रही थी और माता ने कई रस्सियों को जोड़ा पर सब रस्सियों को जोड़ने के पश्चात भी ये रस्सियाँ क्या लोग भी छोटी निकल रही तो लोग भी छोटी निकल रही थी। उसका भाव क्या है पहले उन्होंने का भाव था आप प्रयास करोगे तो ये भगवान की कृपा से उन्हें समझ सकोगे। जब भगवान ने देखा मेरी माता इतना प्रयास कर रही है तो फिर उन्होंने उन्हें मानने दिया। तो इसी प्रकार जब भगवान देखेंगे हमारे भाव प्रयास कर रहे हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए मेरी खुशी के लिए आगे ग्रंथ में है क्या भगवान का संदेश तो फिर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं आपके प्रयास से। तो आप सबसे निवेदन है आपसे जुड़िए इस सेवा में जिस स्थान में आप रहते हो उस स्थान में जाकर आप जुड़िए और प्रभुपाद के महिमा को बताइए। प्रभुपाद जी कहते थे दीज बुक्स विल वन डे बिकम द लॉ बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी चाहते थे कि विश्व के जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं वो भी इन ग्रंथों को पढ़ें और ग्रंथों के आधार पर शासन करें। अगर इन ग्रंथों के आधार पर शासन करेंगे तो पूरी प्रजा सुखी हो जाएगी जैसे राम राजे के समय सुखी थी। तो आप सब जुड़ेंगे मैराथन में। मैराथन कब शुरू होगा कई महीनों में शुरू हो भी गया तो आज साल अभी जल्दी से शुरू कीजिए मैराथन। ओके हरे कृष्ण।